नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं डॉक्टर राज राजीव, भूगोल शिक्षक चंद्रशेखर सिंह बालिका उच्च विद्यालय वासुदेवपुर मुंगेर। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं भारत की स्थिति, स्थानिक संबंध, संरचना और उच्चावच। खनिज संसाधनों की दृष्टि से धारवार क्रम की चट्टानों में सोना, तांबा, जस्ता, लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम, मैग्नीज आदि महत्वपूर्ण धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है पुरान समूह की चट्टाने। इस समूह में चट्टानों का निर्माण धारवार क्रम की चट्टानों के निर्माण के काफी लंबे समय बाद हुआ। इस लंबी अवधि में धारवार चट्टानों वाले अधिकांश क्षेत्रों में भूगर्भिक हलचले घटित हुई, जिनके फलस्वरूप अनेक ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों तथा भू अभिनतियों का जन्म हुआ। इस समूह की चट्टानें निम्नलिखित दो क्रमों के अंतर्गत फैली हुई है। पहला, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा के नाम पर हुआ है, जहां एक बहुत बड़े अर्धचंद्राकार क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। इन चट्टानों के संदर्भ में सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये जीवाश्म रहित है। हालांकि धारवार चट्टानों की तुलना में रूपांतरण कम हुआ है। सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट तथा चूना पत्थर इस क्रम की प्रमुख चट्टानें हैं। इस क्रम की चट्टानें देश के निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में कृष्णा नदी की घाटी के साथ साथ मध्य प्रदेश के रीवा, विजावर तथा ग्वालियर, झारखंड के सिंहभूम जिले में, उड़ीसा के क्योंझर व कालाहांडी जिलों में और राजस्थान के पूर्वी भाग में अजमेर, पश्चिमी मेवाड़, अलवर वो अजयगढ़ आदि क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इनका भी आर्थिक महत्व है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवार क्रम की चट्टानों की अपेक्षा कम संपन्न है। यहाँ तांबा, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, सीसा, चूना पत्थर, बालू पत्थर तथा संगमरमर आदि खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम बालू पत्थर, सैल तथा चूना पत्थर की अस्तरीकृत चट्टानों का एक विशाल क्रम है। विस्तार की दृष्टि से इस क्रम की चट्टानें पूरब में बिहार के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र तक यानी बुंदेलखंड क्षेत्र को छोड़कर तथा उत्तर में आगरा से दक्षिण में होशंगाबाद तक लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है। अरावली क्षेत्र के पश्चिम में जोधपुर वो चित्तौड़गढ़ के निकटवर्ती भागों में, दूसरा आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में कुर्नूल श्रेणियों के रूप में, और तीसरा है ऊपरी गोदावरी घाटी वो नर्मदा घाटी के उत्तरी भागों में, और चौथा है प्रायद्वीपीय भारत में पीर पंजाल वो धौलाधर श्रेणियों, शिमला तथा समीपती घाटी के निकटवर्ती भागों में भी ये पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। इस क्रम की चट्टानों से बालू पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी व अग्नि प्रतिरोध मिट्टी आदि की प्राप्ति होती है। पन्ना, गोला कुंडा, इन्हीं चट्टानों से हीरे भी निकाले जाते हैं। तीसरा है द्रविड़ समूह की चट्टानें। इस समूह के अंतर्गत उन चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है जिनका निर्माण कैम्ब्रियन युग से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस युग तक हुआ। ये चट्टानें जीवाश्म मुक्त है तथा मुख्यतः प्रायद्वीप के बाहरी भागों में पाई जाती है। इस समूह की चट्टानों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, जिनका वर्णन गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत भी हमने किया। वहीं आर्यन समूह की चट्टानों के विषय में हम जानेंगे। कार्बोनिफेरस युग से लेकर प्लीस्टोसीन युग तक निर्मित चट्टानों को आर्यन समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस अवधि में भारत वर्ष के भौगोलिक व भूगर्भिक मानचित्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। इसी अवधि में हिमालय पर्वत तथा गंगा सतलज के मैदान का निर्माण हुआ। इस समूह की चट्टानों को निम्नलिखित चार क्रमों में विभाजित किया जाता है। पहला है गोंडवाना गोंडवाना क्रम की चट्टाने भूगर्भ शास्त्रियों के मतानुसार इस क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग के मध्य तक हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के निर्माण के उपरांत प्रायद्वीपीय भारत में एक लंबे समय तक भूगर्भिक हलचलें शांत रही, परंतु ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में हर्शियन हलचलों के कारण महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण में विश्वव्यापी परिवर्तन हुए तथा अनेक मोड़दार पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। इसी समय हिम युग का आविर्भाव भी हुआ, जिसके फलस्वरूप हिम नदियां उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को अपर्दित करने में संलग्न हो गई और अपर्दित पदार्थों से नदियों की घाटियों वो ऐसे छिछले जलीय भागों में निक्षेपित होने लगे जहां नम व दलदली दशाओं के कारण सघन वनस्पति का आवरण हुआ तथा रेंगने वाले जलीय जीव जंतु उपस्थित हुए। कालांतर में अपर्दित पदार्थों के लगभग निक्षेपण के कारण ये सघन वनस्पतियां अवसादों की मोटी तहों के नीचे दब गई। यही दबी हुई वनस्पतियां आज हमें कोयले के रूप में प्राप्त होती है। दामोदर घाटी में एक लंबी पेटी के रूप में राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत पाई जाती है। महानदी की घाटी में महानदी श्रेणी के रूप में पाई जाती है। वहीं गोदावरी नदी के साथ साथ अलग अलग बिखरे लंबाकार क्षेत्र के रूप में नागपुर से लेकर गोदावरी डेल्टा तक इन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र का भी बच्चों आर्थिक महत्व है। आर्थिक दृष्टि से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का महत्व 98% कोयला, जो वर्तमान औद्योगिक सभ्यता का मूल आधार है, इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। कोयला के अतिरिक्त इमारती पत्थर, चीका मिट्टी तथा लौह अयस्क भी प्राप्त होते हैं। दूसरा है दक्कन ट्रेप अथवा लावा प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी पश्चिमी भाग में तापी नदी की घाटी के दक्षिण में लगभग 5,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत पठारी प्रदेश को दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण क्रीटेशस युग के अंतिम काल में ज्वालामुखी उद्गार से निस्रित लावा के अनुप्रस्थ परतों के रूप में निक्षेपित हो जाने से हुआ है। लावा परतों की गहराई सर्वत्र एक समान नहीं है। इसकी गहराई पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर क्रमशः कम होती जाती है। इसका भी आर्थिक महत्व है। दक्कन ट्रेप से भवन व सड़क निर्माण हेतु उत्तम पत्थर प्राप्त होते हैं। कुछ स्थानों पर मानिक, एगेट तथा अन्य घटिया रत्न भी मिलते हैं। लावा चट्टानों के विखंडन के से उपजाऊ काली मिट्टी प्राप्त होती है, जो कपास व मूंगफली की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। तीसरा है टर्शियरी क्रम की चट्टाने। ईओसीन से लेकर प्लायोसीन युग तक का समय टर्शियरी कल्प कहलाता है तथा इस अवधि में निर्मित चट्टानों को टर्शियरी क्रम की चट्टाने के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भारत के भौतिक इतिहास में इस कल्प का विशेष महत्व है। गोंडवाना लैंड पूरी तरह से विभाजित होकर तथा इसके कुछ भागों में समुद्र में डूब जाने से प्रायद्वीपीय भारत ने एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में ग्रहण किया। इसी युग में टैथिस सागर की तलहटी पर निक्षेपित अवसादों के मुड़कर ऊपर उठ जाने से हिमालय पर्वत का आविर्भाव हुआ। इसका आर्थिक महत्व यह है कि इन चट्टानों में टर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला, पेट्रोलियम, मुल्तानी मिट्टी वो गेरू आदि खनिज प्राप्त होते हैं। और चौथा है प्लिस्टोसीन क्रम की चट्टाने। प्लिस्टोसीन काल भूगर्भिक इतिहास में सबसे छोटा परंतु अनेक दृष्टि से सर्वाधिक आकर्षक वो महत्वपूर्ण कहा जाता है। इसी काल के दौरान संसार के अधिकांश प्रदेशों ने अपना वर्तमान भू आकृति स्वरूप ग्रहण किया। भारत में लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्लिस्टोसीन क्रम के निक्षेप पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाकर निक्षेपित किए गए हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान इस क्रम की महत्वपूर्ण देन है। इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वतों से निकलकर आने वाली नदियों जैसे सतलज, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाकर बिछाई गई कांप मिट्टी से हुआ है। ऐसी संभावना प्रकट की गई है कि हिमालय के निकट मिट्टी की गहराई अधिक है, जो प्रायद्वीपीय की ओर चलने पर क्रमशः कम होती है। मिट्टी की अधिकांश गहराई 2100 मीटर तक आंकी गई है। अतः बच्चों, हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि भारत का प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, जो प्राचीनतम काल की चट्टानों से लेकर आधिनूतन युग की चट्टानों द्वारा निर्मित है, एक अत्यंत जटिल भूगर्भिक संरचना वाला प्रदेश है तथा इसी के आसपास देश के लगभग अधिक प्रदेशों का विस्तार वो निर्माण हुआ है। तो हमें सुनने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।